एक अनन्य रत्न हैं, आप हमारे बीच में हैं। तो मैं बहनों को स्टेज पे आमंत्रित करूंगी कि वो फूलों से और बैस से भाई साहब का स्वागत करें, अभिवादन करें। और भाई साहब जो हैं, अभी जो विषय आपके सामने लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कहानियां सी ये कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, और समय कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। हम एक बार फिर से इस सायकालीन सत्र में भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति, थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए, थोड़ा स्पोर्ट्स की एनर्जी, उमंग, उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते, नमस्ते करिए। हाँ, अब ये भी बोलना पड़ता है आजकल, क्योंकि नमस्ते बिना हाथ जोड़े भी हो गया आजकल, ठीक है ना। चलिए नमस्ते। गुड इवनिंग। आपका इवनिंग गुड है? क्यों आपका इवनिंग गुड है? मैं आया हूँ इसीलिए। स्पोर्ट्स वाले इतना अच्छा झूठ भी बोल सकते हैं, ये मुझे पता चल रहा है। अच्छा, ओ आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आपका इवनिंग गुड क्यों है? एक कारण है कि गिरीश भाई के साथ हैं। हाँ, मतलब आप लोग सामने वाले को खुश भी इतना अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं? गुड। चलिए, गुड इवनिंग इसीलिए है हमारी माताओं बहनों के लिए, क्योंकि उनको खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, घर का काम नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ आराम ही आराम है, बस बैठ करके एंजॉय करना है। ठीक है, मुझे भारत के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब विदेशी भी अच्छे लगते हैं, लेकिन भारत के लोग अति प्रिय लगते हैं। इतने वंडरफुल हैं भारत के लोग, इतने अच्छे हैं, इतने सुपर्ब हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने स्मार्ट हैं। पता है क्यों स्मार्ट हैं? क्योंकि मेरे जैसे भाषण करने वाले जो होते हैं ना, जब हम भाषण करते हैं भारत के लोगों के बीच में, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स वाले तो बहुत अच्छे हैं, बाकी भारतवासियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं बात करता हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि भारत के लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग आंखें खोल के भी सो सकते हैं, ठीक है ना। किसके लिए ताली बजा रहे हैं? अच्छा, खुद के बारे में सुन करके ताली बजा रहे हैं, तो दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत अच्छा। आप सभी का ये स्पोर्ट्स विंग के अंडर में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसमें आप सभी का ईश्वर परमात्मा की तरफ से, स्पोर्ट्स विंग की तरफ से और गिरीश भाई के बिहाव से बहुत बहुत आज के शाम के इस कार्यक्रम में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत हार्टी वेलकम। आज हम थोड़ा सा एक सीरियस विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखें, इस क्लास के दौरान आपके मन में कोई भी प्रश्न आए तो कृपया करके तुरंत पूछिएगा, तुरंत आपको पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोई बात अच्छी लगे तो ज़ोर से ताली बजाइएगा, आपके ताली बजाने से बाजू वाले का उद्धार हो सकता है, क्योंकि वो शायद सो रहे होंगे, ताली से वो जग जाएंगे और ये बातें सुनेंगे, समझेंगे, तो शायद उनको जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त होगा। शुरू करें? शुरू करते हैं एक मिनट मेडिटेशन से, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आज का जो हम विषय है वो मेडिटेशन के बहुत क्लोज है। In other words, I can say it is as good as talking about what meditation is all about. ठीक है, meditation क्या है, उसको हम कैसे अपने खेल में use कर सकते हैं अपने benefit के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। So 1 minute of complete silence, ठीक है, कोई म्यूजिक नहीं रहेगा, कोई गीत नहीं बजेगा, कोई लाइट्स चेंज नहीं होंगे, बस मेडिटेशन करिए। रेडी करें मेडिटेशन 1 मिनट। ओके हियर वी स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। ओम शांति। रिलैक्स, वापस आ जाइए। किया मेडिटेशन? किया मेडिटेशन किया सबने? बहुत अच्छा। क्या किया मेडिटेशन में? क्या किया हाँ भाई साहब बोलिए। ओ क्या बात है, कनेक्शन विद द सुप्रीम किया भाई साहब, बहुत अच्छा। आप राज्यों का अभ्यास करते हैं इसीलिए कनेक्शन विद द सुप्रीम। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्टिव या पैसिव स्पोर्ट्स, भले आप स्कूल में खेलते हैं, कॉलेज में खेलते हैं, स्टेट लेवल में या कोई क्लब से खेलते हैं, जो खेलते हैं और चाहते हैं कि मैं खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ूँ, वो ज़रा हाथ ऊपर उठाएं, जो खेलते हैं बच्चे यूथ। अच्छा अरे वाह, यहाँ बहुत सारे बैठे हैं। हाँ आप लोगों ने क्या किया मेडिटेशन में? साहब खेलने बोलो तो खेल देंगे, बोलने नहीं बोलो, बोलना बहुत तकलीफ वाली बात, वो भी सबके सामने बोलना तकलीफ है। क्या किया मेडिटेशन में? हाँ जी फैंटास्टिक ब्रदर, भाई साहब कह रहे हैं मैंने अपने श्वास की गति पर, मैं एक्सहेल कर रहा हूँ इनहेल कर रहा हूँ, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित किया और ये डिसाइड किया कि मेरा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए, फुल्ली ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट पर करना चाहिए। ठीक है, वंडरफुल। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, मेडिटेशन करने के लिए एकाग्रता की शक्ति होना चाहिए, आपका मन एक जगह लगे रहना चाहिए। जैसे भाई साहब ने अपने मन को कहीं और लगने नहीं दिया और सीधे अपने श्वासों की अंदर बाहर के जो चलन है उस पर फोकस किया, द प्रोसेस, करेक्ट। बिना एकाग्रता के मेडिटेशन हो नहीं सकता। अगर मैं आपसे पूछूं जब हमने 1 मिनट मेडिटेशन किया तो मन एकाग्रचित्त हुआ या फिर इधर उधर किधर गया? हाथ मत उठाइएगा, अपने आप को जवाब दीजिएगा, नहीं तो फिर पब्लिक में हमारी वैसे ही बहुत अच्छा इमेज है, ठीक है ना। और आप अगर आपने पूछ लिया गिरीश भाई जिन जिन का मन इधर भटक रहा था हाथ ऊपर उठाओ, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा पाया गया है, विशेष में बच्चों से बात करता हूँ, कि जिस प्रकार की हमारी फिजिकल एक्सरसाइज की ट्रेनिंग होती है, जिस स्पोर्ट्स से आप खेलते हैं उसकी, उसके कोचेज होते हैं, उसके टेक्निकलिटीज़ के आपके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा ट्रेनिंग होता है, वैसे ही इसकी ट्रेनिंग शायद हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है, ठीक है। और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसको कैसे करना है वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है, एक सेकेंड ना, आज का जो हमारा विषय है, ये सब भारत के और पूरे विश्व के, बहुत आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन, ये लाइट्स, ये जो फोकस वाले लाइट्स अगर थोड़ा बंद कर सकते हैं, या अब दिख रहा है, या सो ये सब अपने अपने खेल के क्षेत्र में बहुत बहुत जाने माने प्रख्यात वर्ल्ड फेमस एथलीट्स का हो या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का हो, एंड दे हैड वन थिंग इन कॉमन दैट दे वर विनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. वो बहुत सफल खिलाड़ी थे और सफलता उनको ऐसे ही नहीं मिली, उन्होंने उसके लिए बहुत प्रयास भी किया. एक प्रयास जो विशेष आपके लिए एक नया विषय हो सकता है, या आपने इसके बारे में सुना भी होगा बट इसको हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसके बारे में मैं आज आपके साथ थोड़ा सा चर्चा करूँगा, और वो है मेंटल इमेजरी फॉर विनिंग. मेंटल मतलब मन, इमेजरी मतलब जैसे बहन ने कहा था कल्पना करना, दृश्य चित्रीकरण करना, उसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं विजुअलाइजेशन करना. और ये विजुअलाइजेशन हम करते भी हैं ज़्यादातर तौर पर. ऐसा पाया गया है आपको कोई गेम खेलना हो उसके पहले हमारा जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं और उससे होने वाले शारीरिक और मानसिक रिस्पॉन्स हैं, वो बहुत हद तक नेगेटिव ही होता है. मान लो मैं कोई स्पोर्ट्स खेलने जा रहा हूँ, कंपटीशन में जा रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादातर तौर पर यही विचार आएगा अगर मैं हार गया तो क्या होगा. कभी हमारे अंदर ऐसा विचार नहीं आता जीत जाऊंगा तो क्या होगा. सो द टेंडेंसी ऑफ द माइंड टू गेट इन टू अ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न बहुत स्वाभाविक है. आपको एक उदाहरण देता हूं, ये क्यों हो गया ऐसे, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमने ऐसे ही हमको बताया गया, हमको सिखाया गया, उस पैटर्न को हमको ब्रेक नहीं किया गया. मान लीजिए आपको मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए गिरीश भाई का मूड खराब है किसी कारणवश, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं थोड़ा उदास हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मूड ऑफ है सिंपल भाषा में, ठीक है. और उसका कारण मैं बता देता हूँ, मेरा मूड इसीलिए खराब है क्योंकि मेरे पिताजी को, मुझे समाचार मिला ये, मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, आईसीयू में है, डॉक्टर्स ने 48 आवर्स का ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा. अब स्वाभाविक है बेटे को तो टेंशन तो होगा, पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, पिताजी के हेल्थ फ्यूचर उनको सोच सोच कर गिरीश का मूड खराब है, टेंशन में है, मैं इरिटेटेड हूँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, थोड़ा हताश हूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ, करेक्ट. आप मेरे प्रिय मित्र हो, आप ऐसे मेरे पास आए और आपने कहा गिरीश भाई क्या ऐसा मूड खराब करके बैठे, चल बाहर चलते हैं, थोड़ा मुस्कुराओ. मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मूड खराब है, ठीक है. और चूंकि आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकते हैं, कोच भी हो सकता है, आपका कोई मित्र भी हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, माता पिता भी, एनीबडी फॉर दैट मैटर, आपके प्रियजन, मेरा आपसे सवाल ये है क्योंकि आप मेरे प्रिय हैं, आप गिरीश भाई का मूड कैसे चेंज करेंगे. आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा मुस्कुराऊं, थोड़ा टेंशन दूर हो जाए, थोड़ा परेशान नहीं रखूं, सो व्हाट विल यू डू. हाँ जी जी बहुत जी, कितने अच्छे मित्र हैं, ठीक है ना. इनको सारे दुनिया के हॉस्पिटल से कनेक्शन है, मतलब जो भी हॉस्पिटल में आपके पापा है क्या इनका कनेक्शन है, बहुत अच्छे, इतने अच्छे मित्र है, जिस हॉस्पिटल में आपका पापा एडमिट है वहाँ मेरी पहचान है, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, बिल्कुल टेंशन. लेकिन ये जिस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने ही मुझे बताया, 48 आवर्स के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना. एनीवे टू टू गुड, और बताइए आप क्या करेंगे. हाँ थोड़ा जोर से बोलिए भाई साहब. हाउ हाउ, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. ओके, बाय सेइंग ऑल द गुड वर्ड्स. ओके, और आप लोगों ने किसी का मूड कभी अच्छा किया ही नहीं है लगता है. हाँ अब मैडम, अच्छा ये मुझे पापा के पास लेके जाएंगे और बोलेंगे वो रहे ना रहे हम आपके साथ जरूर रहेंगे, ठीक है. मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, हम आपके साथ हैं रहेंगे, उनका पता नहीं है, वो डॉक्टर ही बताएंगे, ठीक है ना. टू गुड, और बताइए ब्रदर. अरे बहुत सिंपल है, इतना भारी भारी मत सोचिए। आप किसी का मूड, आपका मित्र है। हाँ सिस्टर प्लीज, मैडम बिल्कुल करेक्ट है। यू आर ट्राइंग टू हेल्प मी बाई सेइंग दैट डोंट वरी, वी आर विथ यू, टू गुड। हाँ थोड़ा जोर से, मुझे भी पता है वो, जरा पांव बाहर करेंगे, छू लेता हूँ ये। बोलो अच्छा सोचो, ये मुझसे ही हो जाता था तो आपकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ठीक है सिस्टर प्लीज एक मिनट। ये कह रहे हैं मेरा दुख इनको दे दो, पापा का बीमारी और वो सब इनको दे दो, आप है ना मेरा बिल्स बस भर देना हॉस्पिटल का, उससे भी ये अच्छा है, आप हमारा दुख दे दो ब्रदर। अरे सिंपल, आप लोग बहुत अच्छे ऑडियंस हैं। ठीक है बहुत अच्छा, बहुत दुआएं देंगे। दोस्तों आपका जवाब बहुत सही है, लेकिन मैं जो जवाब चाह रहा हूँ वो आपसे मुझे नहीं मिल पा रहा, क्योंकि शायद मेरा प्रश्न ही ठीक नहीं था। सिंपल मूड ठीक करने के लिए पता है आप क्या करेंगे? बोलेंगे छोड़ना क्या सोच रहा है, डॉक्टर ने ऑलरेडी कहा है ना 48 आवर्स, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दुख में इस मोमेंट में हम हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा ना हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन मूड ठीक करो। अब मूड ठीक करने के लिए पता है आप मेरे साथ क्या करेंगे? आप मेरे साथ, अगर आपको पता है मेरे बारे में कि मेरे को थोड़ा स्पोर्ट्स में, सिस्टर प्लीज प्लीज, टू गुड टू गुड जी, बहुत अच्छा करेक्ट फैंटास्टिक टू गुड, बहुत अच्छा। सिस्टर के लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छा ब्रदर। जी वंडरफुल फैंटास्टिक टू गुड टू गुड। आप लोगों ने जो उत्तर दिया वो कोई गलत नहीं था, बट मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ उस पर मैं लेकर आने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको पता है मुझे क्रिकेट का थोड़ा शौक है, स्पोर्ट्स का थोड़ा शौक है, तो आप मेरे साथ बात करेंगे। तुमने वो कॉमनवेल्थ गेम्स का सिंधु का मैच देखा, सेन का मैच देखा, वो वन डाउन चल रहा था बट ही चेंज द स्ट्रैटेजी, वो अटैकिंग करना, पहले वो डिफेंसिव था फिर अटैक करने लगा। मैंने कहा हाँ मैंने देखा था। अगर आपको पता है मुझे थोड़ा खाने पीने का शौक है, तो बोलेंगे यार अपन ने लास्ट वीक में वहाँ पर जाकर खाना खाया था ना, क्या टेस्टी था, अपन एक और बार जाकर। देर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि मेरे को थोड़ा अच्छा फील होने लगेगा। पता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है? साइकोलॉजिकल रीज़न ये है, वैसे तो सर साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मूड आपकी भावनाओं का आधार, आपके विचार हैं। जैसे आप सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, वैसा ही करस्पॉन्डिंग मूड बनेगा। क्योंकि मैं पिताजी, हेल्थ, डॉक्टर ने कहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके कारण मेरा मूड थोड़ा सा उदास, परेशान, दुखी। जैसे ही आपने क्रिकेट के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, इंडिया को इतना अच्छा गोल्ड मिला, और वो जो टेबल टेनिस का मैच तो बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना, क्या अच्छा था, हम मतलब इंडिया डिड अ वेरी वंडरफुल थिंग, और जो रेसलिंग का जो मैचेस थे वो भी बहुत अच्छा था, वो सब करने के कारण आपने मेरे मन में अभी स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, रेसलिंग, बैडमिंटन के बारे में बोलने लगे, वो सब मेरे मन में विचार आया, गोल्ड सिल्वर वंडरफुल मैचेस, चैलेंजिंग मैचेस, तो मेरा मूड भी करस्पॉन्डिंग चेंज हो गया, क्योंकि मेरे वो पापा के बारे में विचार करना छूट करके अभी मैं स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहा हूँ। एक चीज प्लीज यहां से लेकर के जाइएगा, आपकी भावनाएं, आपका मूड, गुड या बैड, टेंशन या स्ट्रेस फ्री, परेशान या दुखी, एंगर या पीस, मूड या इमोशंस, दूसरी भाषा में मैं इमोशंस या फीलिंग्स कह लो, अभी तक अभी आपके लिए मैं तीनों को एक करता हूं, वैसे इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। एनी फीलिंग, आपको क्या महसूस हो रहा है, उसका आधार आपके विचार हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ऐसा क्यों है दोस्तों कि मुझे किसी मित्र की आवश्यकता पड़ी मेरा मूड चेंज करने के लिए? प्रश्न यह है, क्या गिरीश गिरीश का मूड नहीं चेंज कर सकता? और मैंने कोशिश भी किया, पापा, डेथ,
ट्रीटमेंट खर्चा क्या होगा, मैं अकेले कैसे रहूँगा, पापा का स्नेह रिस्पेक्ट रिगार्ड मुझे नहीं मिलेगा, उनका साथ मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं ड्वेल कर रहा था तो वैसे ही करस्पॉन्डिंग मूड हुआ और मैंने अपने मन को खुद अपने आप से हटाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा पाया गया ये ऑटोमेटिकली वहीं चला जाता है। मैं फिर यहाँ लाने का प्रयास करता हूँ, देन ऑल्सो इट गोज। इसीलिए मन की शक्ति को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अपने किसी भी प्रोफेशन में, अपने फायदे के लिए हम नहीं कर पाते। और आज तो लोगों को लोग नहीं चाहिए, मित्र नहीं चाहिए, प्रियजन नहीं चाहिए, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मूवीज, मूड खराब है ये देख लो, 3 घंटा ये देखा मूड चेंज हो गया, टेम्पररली तो चेंज हो गया, चैट कर लिया फेसबुक में, व्हाट्सएप में या जो भी है, और वो तो इतना इंस्टेंटेनियसली अवेलेबल है। और ये कभी गुस्सा नहीं करता है, आपका प्रिय मित्र एक बार बोलेगा मूड चेंज कर ले, 2 बार बोलेगा, 3 बार आप रोते ही जा रहे, बोलेगा तू रो कितना तेरे को समझाऊं। यूट्यूब कभी नहीं बोलता कितना तेरा मूड चेंज करूं, आप क्लिक करते जाओ चालू रहेगा, एंजॉय करते जाओ। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज समझ में आता है, आपकी डिपेंडेंसी आपके मन मूड को चेंज करने का बाहर है, दैट इज नॉट हेल्दी। आध्यात्मिकता और यहाँ पर विशेष ईश्वर पिता परमात्मा हमारा सबसे अच्छा कोच है, वो हमको ये ट्रेनिंग देता है कि कैसे खुद खुद के मन के विचारों को चेंज करिए, योर करस्पॉन्डिंग मूड विल चेंज। और मूड से पता है क्या होता है, मूड से बनता है हमारे बिहेवियर, हमारा एक्शंस, हमारा कर्म। मैं पापा को लेकर थोड़ा दुखी परेशान था, मेरे मित्र ने आकर मुझसे पूछा क्यों ऐसा मुंह लटका के बैठा, मैंने कहा थोड़ा सा टेंशन है, पापा की तबीयत ठीक नहीं। 2 मिनट के बाद वापस वो मुझे इधर उधर की बातें करने लगा, बोला क्यों मूड खराब करके, चल ना बाहर चलते घूमते। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, वो जबरदस्ती मुझे पेस्टर कर रहा है, क्योंकि मैं पापा के विचारों को लेकर थोड़ा सा टेंशन में था, उससे करस्पॉन्डिंग मेरा मूड खराब था। हो सकता है मैं उसको 2 गाली दे दूं, तू समझता क्या, शांत बैठना, वैसे ही यहां टेंशन कम नहीं है, ऊपर से तू भी मेरा दिमाग खराब कराए। अब क्रोध एक्शन में आ गया, फ्रस्ट्रेशन एक्शन में आ गया। और पता है दोस्तों हमारे कर्म का आधार हमारी फीलिंग्स और मूड, मूड का आधार हमारा विचार और मेंटल इमेजरी। इस लेवल पर आकर अगर हमने चेंजेस किया, मैं आपको बताऊंगा, उसका प्रूफ दूंगा और साइंटिफिक आधार भी बताऊंगा कि कैसे वो हमको बेनिफिट कर सकता है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा हमको फायदा करेगा। और मैंने पूछा था ना गिरीश भाई के मूड को क्यों नहीं चेंज कर पा रहा है, क्योंकि मैं अपने मन के विचारों को स्वतः नहीं चेंज कर पा रहा। और ये क्यों नहीं चेंज कर पाते हैं हम, और अगर चेंज कर भी रहे हैं तो वो वापस पापा के ख्यालों में आ जाता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बचपन से लेकर शायद अभी तक गिरीश भाई के माता पिता, शिक्षक, टीचर्स, कोचेस, एल्डर्स, चाचा, मामा, समाज, दुनिया, सारे लोगों ने बस एक ही जगह पर मुझे चेंज करने के लिए कहा, बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं खेलते, ऐसे नहीं प्रिपेयर करते, करने वाले जगह पर ही हमको चेंज करने के लिए कहा। लेकिन करने का आधार क्या था, फीलिंग्स, फीलिंग का आधार क्या था, विचार। मम्मी ने बचपन में कभी नहीं कहा, बस यही कहा ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं सोते, ऐसे नहीं पहनते, ऐसे नहीं बोलते। घर में बड़े मेहमान आए तो मैंने उनको कहा तुम लोग इतने जल्दी कैसे आ गए, मम्मी ने दिया खींच के चाटा, बोले बड़ों को तुम नहीं बोलते, आप बोलो, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं सोते, ऐसे नहीं खाते। ये तो एक्शन लेवल पर है, लेकिन एक्शंस का आधार हमारी इमोशंस, फीलिंग, फीलिंग का आधार हमारे थॉट्स। मम्मी ने कभी नहीं कहा बेटा ऐसे नहीं सोचते, सोच तो हमारा है ना, और हम कैसे भी सोच लें, बट ऐसे नहीं बोलते। सो हमारा पूरा ध्यान वॉज ऑन एक्शंस, एक्शंस का आधार। और 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, वो मेरा फिर एटीट्यूड बन जाता है, फिर मेरी वो दृष्टिकोण में आ जाती है, फिर वो मेरे हैबिट में आ जाती है, हैबिट के बाद वो मेरी पर्सनैलिटी में आ जाती है। वो दीदी कह रहे थे ना गिरीश भाई ने स्कूल कॉलेज में बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक पर्सनैलिटी का आधार है आपकी आदत, आदत का आधार है आपकी वृत्ति, एटीट्यूड का आधार है आपके एक्शंस, एक्शंस का आधार है आपकी फीलिंग्स, फीलिंग्स का आधार है आपके विचार। और वो जो 1 मिनट हमने आपको कहा ना एक मिनट मेडिटेशन करिए, वो वहीं के लिए था। और ये हम नहीं करना चाहते हैं, बोर होता है, क्या फायदा है। ओम शांति वाले करें, हमको तो एक्शंस बताओ। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इतनी अच्छी नींद आती है, वैसे ही थके हुए हैं सारा दिन खेल के, एकांत में बिठा दो। मेडिटेशन इज नॉट स्लीपिंग, ठीक है। सो मेंटल इमेजरी, इट हैज टू डू विद द माइंड, और मन सोचता है। और हमारे आत्मा में एक शक्ति है, कल सुबह का आपका एक क्लास होगा शायद 6:30 बजे, मेरा एक निवेदन है अभी जाके सो जाइए, अभी जाके घूम लीजिए, गिरीश भाई का मिस कर दीजिए कोई हर्जा नहीं, लेकिन कल सुबह का मत मिस करिए। और अगर सुबह का 4 बजे का मेडिटेशन आपका है उसको मत मिस करिए, 2-3 दिन के लिए आप हैं, आप सुबह 4 बजे अगर 2-3 दिन के लिए उठ जाएंगे ना कोई हर्जा नहीं है। आप आज थोड़ा जल्दी सो जाइए। ये जो बाहर वाला जो फ्रेंड है ना जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है, इंटरनेट, उसको 9 बजे बंद कर दीजिए कल अगर जीतना है तो। दोस्तों आपको पता है पीवी सिंधु जब ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीती थी, हम गोपी चंद के साथ बात कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे 2022 में ही, हाँ जनवरी मास में, तो उन्होंने कहा मैं उनको आइसक्रीम खाने नहीं देता था, मोबाइल हाथ लगाने नहीं देता था, वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ है, पता है क्या अर्थ है, हिंदी फिल्म का गीत है, आधा मैं गाऊंगा फर्स्ट का, आधा आप गाना, देखते हैं आपको कितना जनरल नॉलेज है, ठीक है। गाऊं? आप तो इतने टेंशन में बैठे हो जैसे यूपीएससी का मेन इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आंसर नहीं दिया तो भाई नौकरी चली जाएगा। अरे थोड़ा तो मुस्कुराइए, मुस्कुराकर बैठिए, रिलैक्स। गाऊं? ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है मेंटल इमेजरी और डिसिप्लिन में, और जिसने इस पर जीत लिया ना वो जीवन आसान हो जाएगा। और गीत के बोल हैं, दिल है, क्या बात है, ताली बजाइए अपने लिए। अरे भाई मानता क्यों नहीं, चाहता तो हूं लेकिन मानता नहीं है, कर नहीं पाता। मुझे पता है गुटखा खाना गलत है, मुझे पता है रात के 12-12 बजे तक जगे रहना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए नींद, प्रॉपर नींद, हमारे डॉक्टर साहब अगर हैं तो वो आपको बताएंगे, लेकिन क्या करें, दिल है। और अगर आपका मन, दिल मतलब मन, अगर वो नहीं मान रहा है, बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप कितना भी खेल लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी आपके अंदर शारीरिक क्षमता और स्किल क्यों ना हो, ये हराएगा आपको। वो कॉम्पिटिटर नहीं है, चाइना वाले नहीं हराएंगे आपको बैडमिंटन में, ये हराएगा। और अगर 1994 के बाद 3000 स्टीपल चेस में कॉमनवेल्थ गेम्स में किनिया के अलावा किसी को अगर मेडल नहीं मिल सकता था, और अगर अविनाश साबले को मिला तो एक चीज बहुत स्ट्रांग था, और वो कहता है कि स्पोर्ट्स तो बहुत आसान है दोस्तों, इंडियन आर्मी के बाद सियाचिन में जाकर के नौकरी करो तो पता चलेगा, ये थिरता है। क्योंकि वहां पर 25,000 फीट में मनुष्य का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, वहां दुश्मन है -50 डिग्री टेम्परेचर, और आप कोई नए लोगों को नहीं मिल रहे हो, सिर्फ वाइट वाइट वाइट, सांस लेने में तकलीफ है। आप हफ्ते में एक ही दिन नहाते हो, और जिस दिन उनको नहाना है ना उस दिन वो बाहर नहीं आएगा ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि नहाया माना मरने की चांसेस बहुत ज्यादा है, वो अंदर ही रहेगा। यू कैन नॉट टेक अ बाथ एवरी डे। उन परिस्थितियों में जिसने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है वो ऐसा भी कर सकता है। तो मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद कल और आज के सुबह के सेशन में बस इसी पर हम आपको फोकस कर रहे थे, ठीक है। मेंटल इमेजरी को समझने का प्रयास करें, मेडिटेशन भी करेंगे, ठीक है। अब क्या है ये मेंटल इमेजरी, आपको दिख रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। मेंटल इमेजरी इन लाइफ इज अ क्रूशियल टूल फॉर एनीवन्स पीक परफॉर्मेंस, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको अपने परफॉर्मेंस को हाईएस्ट लेवल पर है क्षमता, लेकिन वो जो दिल है कि मानता नहीं है ना उसको गिरा देता है, उसको उसके लिए मेंटल इमेजरी करना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज टैपिंग इनटू द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इस संसार का सबसे अच्छा इमेजिन करने वाला प्राणी कौन है बताइए, जोर से बताइए। हाँ जी, हाँ इंसान है। और उसके साथ एक और कंप्लीट करता हूं, इस संसार में सबसे ज्यादा डरपोक प्राणी, जोर से बोलिए,
क्या बात है, आप कितने कॉन्फिडेंटली अपने बारे में कह रहे हो, अच्छी बात है।
पता है जानवर इतने डरते क्यों नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा इमेजिन नहीं कर पाते, और हम लोग तो पीएचडी एक्सपर्ट है इमेजिन करने में। अगर मैं हार गया तो क्या होगा, धरती आसमान पाताल गिर जाएगी भैया, तुम फेल हो जाओगे। तो हम नेगेटिव सोचने में एक्सपर्ट हैं, हाँ या ना। इस साइकिल को ही ब्रेक करना है, एंड टैपिंग इनटू द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज लाइक रिलीजिंग अ ब्रेक। खुद खुद को पकड़ के रखें, खुद खुद को जकड़ के रखें, इसको छोड़िए, फिर देखिए ये आपका जो आत्मा है उसके अंदर ये जो मन की शक्ति है ना, ये क्या कमाल करके दिखा सकती है। इट अलाउज द माइंड एंड बॉडी टू वर्क इन ग्रेटर हार्मनी। मन की शक्ति और तन की शक्ति, ये दोनों को इस्तेमाल करके कम मेहनत में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते। उदाहरण, बहुत ईजी उदाहरण देता हूं, आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना है? माइकल फेल्प्स, हाथ ऊपर उठाइए, बहुत अच्छा। जिन्होंने नहीं सुना है, माइकल फेल्प्स एक स्विमर रहे हैं, तैराक रहे हैं, और उनकी विशेषता क्या है, 23 गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। ऐसा संसार के ओलंपिक हिस्ट्री में ऐसा एकमात्र खिलाड़ी नहीं हुआ है जिसने अकेले इतने गोल्ड मेडल कमाए, और एक ओलंपिक्स के बाद दूसरा ओलंपिक्स में 4 साल का गैप होता है, और उन्होंने चार चार ओलंपिक्स में भाग लिया। चार ओलंपिक्स में भाग लेकर इतना गोल्ड मेडल कमाने में शारीरिक, अरे ये खराब हो जाता है भाई, इतना आप इनसे काम कराओगे तो ठीक है। माइकल फेल्प्स की एक विशेषता थी, उसका जो कोच है वो ये कहता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, टेक्निकलिटीज, वो स्ट्रैटेजी, वो सब हम सिखाते थे, लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि माइकल फेल्प्स इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा था उसका, वो बहुत ज़्यादा मेंटल इमेजरी करता था। और एक बार उसके कोच ने उनको बताया कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो तुम क्या करोगे, मेंटली सोचो। क्या थी परिस्थिति, आपने कंपटीशन में जंप किया स्विमिंग पूल में, और जैसे ही आपने जंप किया आपका गॉगल्स लीक हो गया, थोड़ा गैप आ गया। जैसे ही आपका गॉगल्स लीक होगा तो क्या आ जाएगा, आंखों में पानी आ जाएगा। आपके गॉगल्स के अंदर पानी है तो आप आंख खोल नहीं सकते हो, थोड़ा तकलीफ होगी, आंखें कितना देर खुला रखोगे, सो यू आर ब्लाइंडेड, लिटरली आपकी आंखें बंद है। ऑलरेडी कॉम्पिटिशन चालू है भाई, अब आप क्या करोगे। एक्चुअली वो कूदा नहीं, वो बस बैठ के सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, मैंने ऐसे डाइव लगाया, आंख गॉगल्स लीक हो गया, पानी भर गया, तो मैं ऐसे मतलब स्विम करूंगा, लास्ट राउंड के लिए इतने में मैं वहां नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, फिर रिटर्न लूंगा, लास्ट के फाइनल लेग के लिए मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करूंगा और मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। और ये प्रैक्टिस उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार नहीं किया, 10,000 से ज्यादा बार किया। एंड उसका फायदा बताऊं, इन 2008 बीजिंग गेम्स, इन द 200 मीटर, ये गिरीश भाई की कहानी नहीं है, ये फैक्ट है, मैं वो फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। इन द 200 मीटर बटरफ्लाई माइकल फेल्प्स गूगल्स गॉगल्स लीक्ड, एक्चुअली में लीक हो गया, सचमुच में लीक हो गया, लेकिन ये बंदा 10,000 बार यहां पर उसने प्रैक्टिस किया था कि भाई क्या करना है, वेरी क्लियर, नो स्ट्रेस, नो इमोशन, बहुत क्लियर था, क्योंकि विचार कैसे क्रिएट करने प्रैक्टिस किया हुआ था। सो ही रिलाइड ऑन द फील ऑफ हिज इमेजरी, बाहर पानी कैसे, कॉम्पिटिटर कुछ नहीं दिख रहा उसको, आंखें ब्लाइंडेड है, टू नो वेर ही वॉज एंड वेन एंड हाउ टू स्ट्रेच फॉर द फिनिश। बैठ किया नहीं 10,000 बार, सिर्फ संकल्प किया, इमेजिन किया, मेंटल इमेजरी किया, एंड यू नो उसका रिजल्ट क्या हुआ, ही फिनिश स्ट्रॉन्ग एंड वन अनदर गोल्ड मेडल, सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसी हालतों में वर्ल्ड रिकॉर्ड कमाना, आप तो घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, और ये क्या हुआ, हे भगवान, हम तो सिर्फ भगवान को ही गाली देते हैं कुछ गलत होता है तो, मैंने कितनी प्रैक्टिस की। अब तो रो क्यों रहे हो, मतलब भारत के लोगों की तो पैटर्न है,
मैंने कितना मेहनत,
तो मुस्कुरा के बोलना, मैंने कितना मेहनत किया, इमोशंस देखो, पता है वो इसीलिए क्योंकि दुखी हूं, विचार ही नेगेटिव है क्योंकि हार गया। अच्छा हारा क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बुरा मत मानिएगा दोस्त, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं दिल्ली में इंडियन आर्मी का प्रोग्राम कर रहा था, ऐसे ही मैंने कहा ओम शांति, हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, ऐसे ही पूछा मैंने, पूछते ना जिंदगी कैसी है, तो दोस्तों तीन उत्तर हो सकता है, एक गुड, एक नॉट गुड, एक ओके. गुड भी कभी कभी, कभी कभी नॉट गुड भी, तीन ही आंसर हो सकते हैं, येस और नो. तो मैंने उनको पूछा जिनका गुड है वो जरा हाथ ऊपर उठाओ. तो काफ़ी लोगों ने हाथ ऊपर उठाया. तो मैंने कहा अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप बता सकते हैं आपका लाइफ गुड कैसे है. मैं, मेरी थोड़ी इच्छा है, वैसे तो मैं मानता हूँ आपका लाइफ गुड है, बट आई जस्ट, मैं थोड़ा सा इच्छा रखता हूँ जानने के लिए. तो एक ऑफिसर ने कहा आई विल रिप्लाई गिरीश भाई. मैंने कहा गो अहेड. उन्होंने कहा माय लाइफ इज गुड बिकॉज माय वाइफ इज गुड. जो भाई लोग ताली बजा रहे ना ये पीड़ित हैं, क्योंकि इनको हर उल्टी चीज में ही आप लोग ताली बजाते हो भाई लोग, ठीक है ना. मतलब उनको रहा ना केवल, बिल्कुल करेक्ट. अच्छा. मैंने कहा और भी कुछ कारण है या वाइफ ही पर रेट की? बोला नहीं, और भी कारण है. मैंने कहा बताइए. बोला माय लाइफ इज गुड बिकॉज माय बच्चे गुड. अपने आप उठ जाते हैं, अपने आप पढ़ लेते हैं. जब मैं ऐसे एक दो बार करा रहा था तो एक माता जी पूछती ऐसे बच्चे कैसे पैदा कर सकते गिरीश भाई जो अपने आप पढ़ लें, अपने आप उठ लें, अपने आप खा लें, अपने आप अपना जीवन को संवार लें. इनके पीछे तो देखो ये हाल हो गया हमारा. मतलब मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ. मतलब बाल झड़ गए गिरीश भाई इन बच्चों की खातिर. सुनते नहीं, मानते नहीं, पढ़ते नहीं, करते नहीं. अच्छा, बच्चे अच्छे तो माता पिता का लाइफ गुड. मैंने कहा और बताइए. बोला मेरा लाइफ इज गुड बिकॉज मेरी नौकरी अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है, धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, कुछ भी इमरजेंसी होगा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने की जरूरत है हमारे पास, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. मैंने कहा बहुत अच्छा. फिनेंशियली आई एम हेल्दी. मैंने कहा और. बोला माई लाइफ इज गुड क्योंकि घर परिवार वालों का हेल्थ अच्छा है, फिजिकली किसी को ऐसा कोई मेजर इलनेस नहीं है. मैंने कहा बहुत अच्छी बात. तो फिर मैंने उनको कहा सर अगर यही पूछ, चलिए मेडिटेशन करें, इमेजरी अच्छा सोचिए अपने बारे में. मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुद्ध हूँ, बहुत पावर हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं सफल हूँ. अच्छा अच्छा इमेजिन करिए 3 मिनट.
आज है सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज अब तो यही ज्ञान का सार योगी बनो ज्ञानी बनो.
शांति। अच्छा अच्छी अच्छी बातें की अपने आप से। अच्छा मित्र वो होता है जो आपको सुनता है, आपको प्यार करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, उस मित्र को आप बड़े अच्छा कहेंगे। मैं अपना अच्छा मित्र नहीं हूं। हम अपने आप से अच्छी बातें नहीं करते, हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, हम अपने आप से प्यार से नहीं बात करते। मेरा मन मेरी नहीं मानता। आप अगर मित्र को कहोगे ना चल अब भी चलना है, बोलेंगे नहीं मैं तो ऑफिस में हूं। बोला चलना है, बोला ठीक है आता हूं, कुछ तो बहाना मार के आ जाएगा, क्योंकि आपका प्रिय मित्र है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो। आपका मित्र आपकी सुनता है, मानता है, तो आप कहोगे इज माई डियर फ्रेंड। जान लुटाने के लिए भी तैयार हूं मैं इस मित्र के लिए, क्योंकि वो मैं जो कुछ कहता हूं ना वो मानता और करता है। प्रश्न दोस्तों, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन मेरा नहीं सुनता, फिर ये तो मेरा मित्र नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि मेरा मन ये करे और मन कुछ और कर रहा है, देन इज नॉट योर डियर फ्रेंड। सो कैन आई मेक माई माइंड माई बेस्ट फ्रेंड? उसके लिए मेडिटेशन, उसके लिए ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान। तो मैं वो बात कर रहा था, मैंने वो ऑफिसर को कहा, उन्होंने कहा लाइफ इज गुड बिकॉज वाइफ इज गुड, बच्चे इज गुड, नौकरी इज गुड, फाइनेंस इज गुड, फ्यूचर लुक्स गुड, हेल्थ इज गुड। मैंने कहा सर अगर यही सब पता लगाना होता तो मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे पूछता था आपकी पत्नी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, नौकरी धंधा कैसे है, संपत्ति कैसा, हेल्थ कैसा है। मैंने वो नहीं पूछा, पूछ सकता हूं ना आपकी पत्नी कैसी है। मेरा प्रश्न क्या था, हाउ इज लाइफ, बताइए दोस्तों। अब प्रश्न ये उठता है हाउ इज लाइफ के पहले तो ये होना चाहिए देन व्हाट इज लाइफ, क्योंकि अगर माय लाइफ इज माय वाइफ तो गड़बड़ है, वो ऊपर नीचे तो गिरीश भाई पति का भी लाइफ ऊपर नीचे, बच्चा ऊपर नीचे तो पप्पा भी ऊपर नीचे, बताइए व्हाट इज लाइफ। चलिए मैं बताऊं मेरे लिए डेफिनेशन क्या लाइफ था। अगर यहां कोई कोचेस बैठे हैं या बड़े आप माता पिता हैं या आप घर में बड़े हैं भाई बहन हैं, आपसे एक नम्र निवेदन है, अपने छोटों से इस बारे में कभी भी गलत मन में विचार मत डालिए उनका, ये बहुत बड़ा पाप है। वो जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहेगा लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं। जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था, ठीक, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, मैं जब दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था तो मेरा जो ये हार्ड डिस्क है ना 500 GB का हार्ड डिस्क खाली था, आपके भी होंगे 500 GB का हार्ड डिस्क, और अभी हालत ये है कि हमारे 500 GB हार्ड डिस्क में 600 GB कचरा भरा है, लेकिन जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था खाली था, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था, डर वर भी नहीं था, और मैं पढ़ने में भी इतना होशियार नहीं था, खेलता कूदता उधम मचाता रहता था, और मम्मी, भारत के मम्मी लोगों का पढ़ना मतलब एक ही जगह पे बैठ के पढ़, और मम्मी का एक ही डायलॉग था पढ़ 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 पढ़, और हम तो घूमते घामते पढ़ते थे, उनको भी एक ही जगह बैठ के पढ़ना है, उनके स्टैंडर्ड के अनुसार हम पढ़े, और एग्जाम के डेट्स नज़दीक आ गए, मम्मी का फ्रस्ट्रेशन लेवल चढ़ गया क्योंकि ये पढ़ ही नहीं रहा था, और मेरी बहन एक ही जगह पे बैठ के एक घंटा पढ़ती थी, उसके कारण भी ज़्यादा हमको तकलीफ। थैंक यू ब्रदर। अब जब एग्जाम 2-3 दिन नज़दीक हुआ, मम्मी का फ्रस्ट्रेशन लेवल चढ़ गया, मम्मी ने डायलॉग थोड़ा चेंज किया, और पता एक ही प्रश्न मुझसे पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा मेरा पढ़ाई का स्टाइल देखकर तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा। पता है मैंने क्या जवाब दिया, क्योंकि मेरा डिस्क खाली था, मैंने मम्मी को कहा कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 1 dozen, 2 dozen भी चल जाएगा, आई एम कंप्लीट। ये सुनते ही साथ मम्मी को हार्ट अटैक आ गया, सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, किडनी अटैक, लिवर अटैक, ब्रेन अटैक, पता नहीं क्या क्या एक साथ अटैक, मम्मी की तो आंखें बाहर, और मम्मी का हाव भाव देख करके, अब भाई छोटा बच्चा तो सबसे मम्मी से ही प्यार करता है, उसके लिए तो मम्मी ही सब कुछ है, और तो कोई है ही नहीं, पापा भी नंबर 2 है, मम्मी इज नंबर 1, और मम्मी का वो फ्रस्ट्रेशन लेवल देख कर मैं घबरा गया, मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ कर दिया, मम्मी मेरे वजह से दुखी, तो मैंने ना आंसर चेंज कर दिया। पता है मैंने जो बोला कितना भी चलेगा, वो उनका तो कंडीशन ही खराब हो गया, तो फिर मैंने डायलॉग चेंज कर दिया। पता है मैंने क्या कहा, मैंने कहा तेरे को कितना चाहिए। हाँ। पता है मम्मी ने क्या कहा, 100 में 100। स्कूल जाऊं मैं,
क्लास में 8-8 घंटे मरूं मैं, घर में आने के बाद फिर ट्यूशन में जाऊं मैं, होमवर्क करूं मैं, एग्जाम का टेंशन लूं मैं, मार्क्स किसको चाहिए? दोस्तों, अगर जीवन का आधार पत्नी बच्चे चाहिए है तो मान के चलिए ये मन में आप कितना भी इमेजिनेशन लेकर आए ये काम नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ज्ञान, इसीलिए वो जो दीदियां आपको बता रहे हैं या कल सुबह से आपको जो सेशन होगा ना, वो आपके यू नो बिलीफ सिस्टम को चेंज करेगा, जो मेरे मम्मी ने मेरे अंदर डाल दिया। और मेरे लिए जिंदगी इज इक्वल टू पता है क्या हो गया? चाहिए, मिलना। क्योंकि माता पिता मेरे को ना, मेरे बाजू वाले के घर वाले इतने दिमाग खराब होता था ना, वहां जाओ नहीं कि वहां जो अंकल जी है ना वो बोलते थे कितना मार्क्स मिला। मैंने कहा घर में कोई कम है जो आप भी पूछ रहे हो यार? वैसे ही हम दुखी, मतलब लाइफ इज इक्वल टू चाहिए, मिलना, हैविंग। गोल्ड मेडल मिलेगा और इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्शन होगा, फर्स्ट रैंक आएगा, तुझे एडमिशन मिलेगा, मिलेगा, चाहिए। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, जिंदगी इज नॉट चाहिए। और जो व्यक्ति ये चाहिए चाहिए के स्ट्रेस से, प्रेशर से जब तक मुक्त नहीं होगा, बहनों के भाषा बता देता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स चाहिए, मार्क्स इज जस्ट एन एग्जाम्पल, प्यार चाहिए। कितना किया सासू माँ को, कितना करे, प्यार से नहीं बात करती है वो, कब करेगी? और सासू माँ से दुखी मेरे पास आकर बोलते, गिरीश भाई मैं क्या करूं जिससे कि सासू माँ का प्यार मिले? मैंने कहा ये मिला मिले वाला ही प्रॉब्लम है, पहले वो वाला फंड, वो जो फाइल है ना उसको ठीक करो। और कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ दोस्तों, अब इनको चाहिए था 100 में 100, जैसा हो सकता था मैंने पढ़ाई वढ़ाई किया, एग्जाम भी दे दिया, रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड, खेलते कूदते नाचते उड़ते गाते मैं घर पहुंचा, मम्मी ने कहा रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? मैंने कहा बस्ते में, ले लो, क्योंकि तुमको ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ही नहीं था। मम्मी मुझसे ज्यादा बैग वैग खोल के अनजिप करके रिपोर्ट कार्ड निकाला, जैसे रिपोर्ट कार्ड निकाला उनकी आंखें खिल गई, चेहरे पे मुस्कुराहट, पता है क्यों? 75% मार्क्स मिले, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये तो फेल होने वाला है। फेल होने वाले बच्चे को 75 मिला, उससे वो बहुत खुश हो गई, जाकर उनके पति को अर्थात पापा को जाके कहा, पता क्या कहा? मेरा बच्चा है भैया, तुमने क्या किया, सारी मेहनत मैं करूं और क्रेडिट आप लेकर जा रहे हो, मेरा लाल है, मेरा बच्चा इतना अच्छा। चलो कोई बात नहीं, पापा भी खुश, मम्मी भी खुश, मैं भी खुश। अब बताता हूं क्लाइमैक्स, ये और प्रॉब्लमेटिक है दोस्तों, भारत के लोगों में तो बहुत ज्यादा है, वैसे तो सभी सभी की साइकी ऐसी ही, आजकल मनोवृत्ति ऐसी है। आधा घंटे के बाद हमारी माताजी मेरे कमरे में आई और मुझे दो तमाचा लगा के दिया, जड़ दिया मुझे जोर से, 2 big tight slap, वन ऑन द लेफ्ट वन ऑन द राइट। एंड मैं समझ ही नहीं पाया यार, अब क्या गड़बड़ हो गया, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था। आफ्टर थरो CBI इन्वेस्टिगेशन, अब लोकल पुलिस तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाई थी, तो मैंने फिर सेंट्रल एजेंसी को इन्वॉल्व किया, उनके बहुत इन्वेस्टिगेशन से पता चला मुझे मार क्यों पड़ी। पता है क्यों पड़ी? क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला। जिंदगी इज इक्वल टू मिलना। तुरंत मैं घर छोड़ा, बाहर गया, हनुमान मंदिर हमारे घर के बाजू तक, घंटी बजाई और भगवान को कहा, भगवान मुझे मिले ना मिले, क्योंकि इसके मिलने से दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि झापड़ मैंने इसके मिलने पर खाया, मेरे मिलने पे तो कम से कम डांट भी नहीं खाया, किसी और को मिलता है ना तो दर्द ज्यादा होता है। यस और नो फ्रेंड्स? अब ये गड़बड़ है, अगर ये मेरी मनोवृत्ति है, अब कितना भी मेहनत कर लो, किसी ना किसी कारणवश किसी को अगर ज्यादा मिला, दर्द मुझे होता है, परेशानी मुझे। इफ माई मेंटल स्टेट, अगर मेरी फीलिंग्स और मेरा एक्शंस इसी पर है, मिलना मिलना मिलना, इस संसार में जितने भी सफल लोग हुए ना, वो मिलने के लिए नहीं किए उन्होंने, मिलना इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ the easiness, the dedication, the sincerity, the love, the passion you have for what you are doing. Yoga ke liye pata hai kya karte hain? Kehte hain, yoga is not something that you perform out of a yoga mat. Yoga mat ke upar hum yoga perform karte na. Yoga is having attention to what you are feeling in everything you do. Aap jo bhi kar, aap khana bana rahe ho. खाना बनाते समय आपकी भावना कैसी है, फीलिंग कैसी है, और फीलिंग का आधार आपके विचार हैं. स्पोर्ट्स के बच्चों, अगर आप खेल इसे ले रहे हो क्योंकि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मान के चलो आप अपने मन को स्ट्रेस दे रहे हो. कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो कुछ चीज़ों को, क्योंकि आपका मन फ्री नहीं है, हल्का नहीं है. आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि समवेयर डीप इन द माइंड यू वॉन्ट टू गेट अ पोजिशन, अ रैंक, अ गोल्ड मेडल, समथिंग. आधार ही गलत है दोस्तों. तो प्रश्न उठता है फिर जीवन क्या है? जीवन एक अनुभूति है. जीवन इज एन एक्सपीरियंस. अभी इस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दौड़ रहे हो, सुबह उठ के मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत मेहनत जैसी लग रही है, फील हो रही है, या अच्छा फील हो रहा है, गुड फीलिंग हो रही है? एंड एवरी मोमेंट व्हाट यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू फील विल कंट्रीब्यूट टू योर लाइफ. और ब्रह्मा कुमारीज में इसको बहुत इंपॉर्टेंट, परमात्मा यही कहता है, बच्चे हर पल देखो आपकी स्थिति कैसी है, शांत हो, रिलैक्स्ड हो, ईजी हो, ब्यूटिफुल हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, एम्पावर्ड फील कर रहे हो, शक्तिशाली फील कर रहे हो. और जो ये कर सकता है ना, वो जीवन में मिले ना मिले, जो हमको दुनिया के हिसाब से चाहिए, तो भी लोग बोलेंगे आप है ना बहुत वंडरफुल व्यक्ति हो, आपके जैसा इंसान को नहीं देखा, सदा खुश रहते हो, सदा शांत रहते हो. क्योंकि अगर मिलेगा तो खुश, नहीं मिलेगा तो दुख. तो मेरे जीवन का फिर आधार तो मिलने पर हो गया. और ये कोई जबरदस्ती नहीं किया है, बचपन से हमारे समाज में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही होगा. हमेशा यही पूछा जाता है, तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा, तुमको एडमिशन मिलेगा, बड़े होंगे तो तेरी शादी में अच्छी पत्नी मिलेगी, वो भी गड़बड़ है. इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट. बस यहीं पे चेंज करिए. अगर मैं एक अच्छा इमेजिन कर रहा हूं ना, तो उसके साथ करस्पॉन्डिंग 10 नेगेटिव भी सोच रहा हूं. और फॉर्मूला ये है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बिकम इट. इतना ईजी है दोस्तों, कर सकते हैं. So what is mental imagery? It's a mental rehearsal or visualization and is defined as a sensory phenomena you experience in the theater of your mind. Man mein ek theater bana lijiye. Aur Raj Yoga meditation sirf concentration nahi hai. You are creating good thoughts, you are creating your good emotions, you are creating a good action, you are creating a good attitude, a good habit, a good personality, a good result, a good destiny, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अब बस संकल्पों के लेवल पर चेंजेस करना. आपको उदाहरण देता हूँ. There was a research done, पियानो होता है ना, पियानो इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें बच्चों को दो ग्रुप बनाया और उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए सा रे गा मा पा सिखाया. ये सा रे गा मा पा मान लीजिए, ठीक है, उनको सबको बताया, बच्चों को दो ग्रुप बनाया और कहा घर में जाके प्रैक्टिस करो, और उनको मॉनिटर किया गया. एक ग्रुप के बच्चे जब घर गए तो घर में उनका पियानो था और उनको कहा हर दिन एक घंटा सा रे गा मा पा प्रैक्टिस करो, उनके घर में पियानो था. जो दूसरा ग्रुप था उनको भी कहा आप घर में जाके प्रैक्टिस करो, लेकिन घर में पियानो नहीं था, ऐसे ही करो प्रैक्टिस, मन ही मन करो, ये सा का बटन, सा में सा रे ब्लैक वाला बटन, गा यहीं पे करो, एक्चुअली में पियानो नहीं है. और उनको हर दिन बुलाते थे और देखते थे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है. और रिजल्ट पता है क्या मिला? जिन बच्चों ने मेंटल रिहर्सल किया, इमेजिन किया, रियल में पियानो नहीं था, उनको सा का आवाज नहीं सुनाई दिया, उनका 5 दिन का परफॉर्मेंस, 5 दिन 1 घंटा, माना 5 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस का परफॉर्मेंस वॉज इक्वल टू 3 डेज ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस पियानो पर. 3 दिन आप एक्चुअली करिए, 5 दिन आप यहां पे करिए, दोनों का रिजल्ट सेम है. इतना वंडरफुल है हमारा ब्रेन, इतना वंडरफुल है हमारी आत्मा, क्या कुछ नहीं कर सकती है. बस इसको सही दिशा, इसको सही इस्तेमाल, इसका सही उपयोग हमें अपने खेल के क्षेत्र में करना है. अब आप बोलेंगे गिरीश भाई आपने बोला और हम मान लें, मेरी बात मत मानिए, आई टेल यू द साइंस ऑफ मेंटल इमेजरी. बहुत सारे फंक्शनल MRIs और ब्रेन न्यूरो साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी किया है, और पता है वो क्या कहते हैं? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम cannot distinguish between actual physical movement and the one that is clearly imagined. आपका brain is a value neutral organ, उसको कुछ नहीं पता. जो आप मन से उसको दोगे आपका brain तथास्तु करेगा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, brain कहेगा तथास्तु. जीतते जीतते आप हारेंगे, मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, बचपन से ही मैंने स्ट्रगल किया, कितना भी कर लो मैं अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ. ब्रेन बोलेगा तथास्तु 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 तथास्तु. और अगर आपने चेंज किया, जो आपको यहाँ सीखना है, जो हो गया हो गया, अब आप ब्रेन को यूज़ करो, वो वैल्यू न्यूट्रल ऑर्गन है. मैं सफल हूँ, मुझे अपने खेल से प्यार है, मैं बहुत भारत माँ का नाम रोशन करने वाला. आपका ब्रेन बोलेगा तथास्तु, उसको ये नहीं पता क्या है क्या है, वो तथास्तु तथास्तु बोलेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट फ्रेंड्स. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन नॉट डिस्टिंग्विश. द ब्रेन पता लगाया गया MRI स्टडी में, द ब्रेन हैज सिमिलर न्यूरल एक्टिविटी, सेम कनेक्शन, सेम सुपर हाईवे बनाता है. When you imagine performing a skill as when you physically perform, आप actually करिए और बैठ के सोचिए, दोनों में same MRI study निकाला गया, there was nothing different. कितना easy है, बिना मेहनत बिना खर्चे किए सिर्फ मन के brain की शक्ति को इस्तेमाल कर, your brain can get practice without having to do anything more than imagining you are performing. बस आपको यहाँ बैठ के इमेजिन करना है, मैं खेल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं उसका टेक्निक है, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी सोचो, वो मैं आपको बताता हूँ. यू आर एक्चुअली गेटिंग रियल प्रैक्टिस. और हमारा ऐसा पाया गया है कि हम नेगेटिव सोचने में बहुत होशियार हैं. न्यूरॉन्स इन द ब्रेन दैट फायर टुगेदर विल वायर टुगेदर. आप यहाँ बैठ करके सोच रहे हो कि मैं कॉम्पिटिशन खेलने जा रहा हूँ, उसको बहुत क्लियरली आपको इमेजिन करना है. एक बार दो बार दस बार आपने वो वायर यहाँ पे जोड़ दिया, रियल खेलने वक्त भी वो फायर करेगा और आपके अंदर वो एनर्जी देगा, आपको ऐसे ऐसे शॉट्स, ऐसे ऐसे आपका परफॉर्मेंस कर देगा. मीनिंग दैट दे क्रिएट अ न्यूरल पाथवे इन द ब्रेन दैट मेक्स एन एक्शन ईजियर टू डू. जो आपने इतने बार इमेजिन किया ना फिजिकली, आपका शरीर उसको रिप्लीकेट करने में बहुत आसान होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा. इसको छोड़ देते हैं. इसका एडवांटेज क्या है? नंबर वन, इट विल इंप्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस. बैठ के सोचिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये वाला शॉट ले सकता हूँ, ये स्मैश कर सकता हूँ, ये वाला अटैक को डिफेंस कर सकता हूँ. बार बार देखिए उस चीज को, इट विल एम्प्लीफाई मोटिवेशन. आपको गिरीश भाई की या फिर कोई YouTube की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने लिए सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे. यू बिकम योर बेस्ट मोटिवेटर, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स कहते हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे. यू विल गेन इन कॉन्फिडेंस, क्योंकि महसूस ही कर रहे हो ना, मैं तो जीतने वाला हूं ना, मैंने यहां पर कितने बार मैं जीता हूं. आपका चाल में, आपके बिहेवियर में, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस दिखेगा दोस्तों. क्यों नहीं दिखेगा पता है क्यों नहीं? एक्शंस का आधार इमोशंस, इमोशंस का आधार आपका विचार, क्योंकि आप विचारों से इतने क्लियर हैं, आपको पता है मुझे क्या सोचना है अभी. इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी हमारे मन के विचार है ना, ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर वैसा होगा तो क्या होगा, हार जाएंगे तो क्या होगा, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा. बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव सोचते हैं. एंड इट हेल्प्स यू टू मेंटेन अ पीक फॉर्म एंड quicken recovery when injured or sick. बहुत जल्दी recovery होती है दोस्तों, क्योंकि you are mentally very positive. शरीर आपको cooperate करेगा, medicines का effect होगा, आपके physiotherapy का effect होगा, आप जो rehab कर रहे हैं, जो rest लेंगे, उससे बहुत जल्दी आप recover कर जाते हैं. This is interesting. He is an Olympic gold medal winner called as Lanny Basham. पता है इन्होंने क्या किया था? He said in his experience, though I could not actually go to the shooting range, ऐसी एक परिस्थिति आ गई थी, वो shooting वाले range में होता है ना उनका ऐसा हॉल होता है जहाँ वो शूट करते हैं, बट आई डिड कंटिन्यू माई ट्रेनिंग. रोका नहीं उन्होंने, और क्या किया, आई सिमुलेटेड शूटिंग फॉर 2 to 4 hours इन माई स्पेयर बेडरूम. जिस घर में रहते थे ना, उन्हें एक स्पेयर बेडरूम था, उसको शूटिंग रेंज बना दिया. और इसको कहते हैं ड्राई फायरिंग. एक्चुअली में शूट भी नहीं किया, टारगेट रखा, वो अपना पूरा ड्रेस पहनते थे जैसे कि वो एक्चुअल कॉम्पिटिशन में ओलंपिक्स में भाग लेने जा रहे हैं. पूरा वैसे ही सिमुलेशन करते थे. स्टेडियम है, लोग बैठे हुए, मेरा चांस आया, मेरा नाम घोषणा किया है, मैं ले रहा हूं एम और ठक. एंड पता है उसका रिजल्ट क्या हुआ? ही सेड आई वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप दैट ईयर इन सियोल. जिस साल मैंने सिर्फ यहीं पे ज्यादा किया, मैं शूटिंग रेंज पे ही नहीं गया. 2 साल कोविड था, कोविड में काफी लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए, लेकिन यहां प्रैक्टिस चल रहा था. कब खत्म होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा? अभी तो कंपटीशन भी नहीं हो रहे हैं, अगर मुझे कोविड हो जाएगा तो क्या होगा? वैसे ही घर की हालत खराब है. हमारा यहाँ इमेजिनेशन चालू था, हम ड्राई फायरिंग कर रहे थे यहाँ पे 2 साल घर में बैठे. अच्छी फायरिंग कर रहे थे या नेगेटिव फायरिंग कर रहे थे, वो मुझे डिसाइड करना है फ्रेंड्स. क्राइटीरिया, मेंटल इमेजरी का मैक्सिमम रिजल्ट अगर आपको पाना है, तो जब आप मेडिटेशन कर, मैं सिंपल भाषा में उसको मेडिटेशन कहता हूँ, मेडिटेशन जब कर रहे हैं या मेंटल इमेजरी, बहुत क्लियर होना चाहिए, विविड होना, स्पष्ट होना चाहिए, आपको देखना पड़ेगा, उसमें मोशन होना चाहिए. मैं जब ये इस पर सब थोड़ा रिसर्च कर रहा था ना, मैं इतना खुश हुआ कि 25 साल से, आज से 25 साल पहले मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया और मैं मेडिटेशन करने लगा. मैंने कहा भगवान को हम या ना बहुत प्यार से बाबा कहते, बाबा मतलब पिता, आत्मा का पिता परमात्मा बाबा. मैंने कहा बाबा आप संसार के सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट, 25 साल पहले ही आपने मुझे ये सब सिखा दिया था. मेंटल इमेजरी, पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपको, आजू बाजू का दृश्य. आप बैठे हैं, दूसरा भी कॉम्पिटिटर है, 100 मीटर डैश में है, उसने कौन सा ड्रेस पहना है, वहाँ की सुगंध कैसी है, वहाँ का फील कैसा है. और इस चीज़ को जब आप कर रहे हैं तो इसको रिपीट करना है, बार बार करना अभ्यास, और कंप्लीट सीक्वेंस स्टार्टिंग से लेकर अंत तक करिए, बीच में छोड़िए मत. और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, उसमें बहुत भावनाओं को लेकर आइए. और ये क्राइटेरियाज को अगर हम मेडिटेशन में या मेंटल इमेजरी में आप करेंगे तो इसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा. ऐसा नहीं बस मैं बैठा हूँ और बोल रहा हाँ मैं तो जीतने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होगा, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, आई एम अ विनर, और फिर इमिडिएटली संकल्प ऐसे बोलने से कहाँ होता है भाई. ये जो टकलू बैठा है सामने, ये विनर हुआ क्या? हमको क्या पता ये कौन सा स्पोर्ट्स जीत लिया और कितने लोग ऐसा गए काम से. पता है इसको हम क्या कहते हैं? लूज मोशन. घर घर चालू है, कंट्रोल ही नहीं है. लूज मोशन, सॉरी हाँ, शरीर में लूज मोशन होगा ना तो शरीर थक जाता है, वीक हो जाता है, फ्लूइड्स लेना पड़ता है. इधर का थकान कंटिन्यूस, कोई दवाई नहीं है स्टॉप करने, सॉरी हाँ. चलिए इसमें क्या करना है, यू हैव टू एंगेज योर सेंसेस. आपकी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्मेल करने की, टच करने की, टेस्ट, इस सबको एंगेज करना है मेडिटेशन में. बोलिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज. हाँ हाँ करेक्ट या करेक्ट 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 या सी. भाई साहब ने ये पूछा है कि कभी शरीर को कोई तकलीफ होती ना तो भी मन नहीं लगेगा, और अगर मन भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर शरीर का परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा. बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरीर मैटर है और जो मन है वो मैटर नहीं है. शरीर के ऊपर मन का असर और प्रभाव ज़्यादा होता है. शरीर का असर मन पर कम होता है, दोनों में मन बहुत शक्तिशाली है। शरीर ऊपर नीचे भी है ना, मन की शक्ति से हम बहुत कुछ इसकी कमी को, इसकी कमजोरी को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जैसे भाई साहब ने पूछा, शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो शरीर का विज्ञान है, जो आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, रेस्ट है, रिहैब है, वो प्रॉपर उनका गाइडेंस भी लीजिए, मन को भी इक्वली शक्तिशाली बनाइए। और ऐसा पाया गया है कि कभी कभी खिलाड़ी शारीरिक तौर पर स्वस्थ ना होकर के भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर आप लक्ष्य सेन की बात करें तो हिज शोल्डर वॉज नॉट वेरी ओके एंड ही डाउटेड वेदर ही विल बी एबल टू विन द चैंपियनशिप, बट मन बहुत शक्तिशाली है, माइंड ओवर मैटर। और मन की शक्ति तन की शक्ति को बढ़ा भी सकती है और तन की जो भी व्याधि है उसको इम्प्रूव भी कर सकती है। बोलिए भाई साहब। अच्छा प्लीज जी खड़े होकर बोल दीजिए ताकि कैमरा में आप आ जाएं। माइक इनको दे सकते हैं तो। हाँ बोल। करेक्ट। करेक्ट। या बहुत अच्छा। मेंटल फिटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। भाई साहब ये कह रहे हैं ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश एंड वो बांग्लादेश क्रिकेट जो बोर्ड हैं और उनके ट्रेन करते हैं उससे संबंधित हैं। वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को अभी तक टेस्ट मैच का सर्टिफिकेशन मतलब नहीं मिला ना अभी तक, लेकिन हाँ दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन द टेस्ट मैचेस। पाकिस्तान के साथ जब वो खेल रहे थे वो बहुत बुरी तरह हारे वो टेस्ट मैच में, तो उनके जो शकीबुल हसन हैं बहुत अच्छे बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, वो प्रेस को बता रहे थे कि हम 3 दिन तक हमने फील्डिंग किया, बॉलिंग किया, हम फिजिकली बहुत अच्छे थे लेकिन फिर भी हम हारे क्योंकि हम मेंटली स्ट्रांग नहीं थे। और दोस्तों मन से जो हार जाता है ना, तन कितना भी अच्छा हो, आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। ऐसे पिछले 1-2 साल में ऐसा आपने भी मीडिया देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे सिनेमा स्टार्स जो जिम में जाकर बहुत अच्छा बॉडी बनाते थे, उनको सबको हार्ट अटैक। बॉडी बहुत अच्छा है, मसल्स बहुत अच्छा है, लेकिन हार्ट, लंग्स, किडनी, मन, ऑर्गन की हेल्थ कैसी है? मैं कितना प्रेशर में हूँ। द लोड ऑन द हार्ट थ्रू द माइंड। इसीलिए मन की शक्ति को अगर आपने बहुत अच्छा किया, शारीरिक तौर पर थोड़ा चैलेंजेस होगा ना, उसको ओवरकम करना आसान हो जाएगा। तो पहला आपने सेंसेस को एंगेज करना, दूसरा है एडवांस सेंसरी एलिमेंट्स, किनेस्थेटिक्स, मूवमेंट्स को आपको यूज करना, इमोशंस को यूज करना, फोकस को इमोशंस करना, बिहेवियर को यूज करना है, इन सबको इंटीग्रेट करना है इमेजरी में। ठीक है चलिए एक बार करते हैं। सीधे बैठिए और इसका टेक्निक ये है हाउ टू डू इट रिमेम्बरिंग अ पास्ट इवेंट। ठीक है मैं बच्चों के हिसाब से बात करूँगा, बड़े भी उसको रिलेट करें। हम पिछली एक बुरी घटना को रिविजिट करेंगे मन ही मन। ठीक है उसमें बहुत स्पेसिफिक मेमोरी को यूज़ करेंगे, सेंसरी एक्सपीरियंस। आप लोग फील करना, आप भी पीछे जाना, उसको बहुत डिटेलिंग में देखना उस सेंसरी एक्सपीरियंस को, उसमें इमोशंस भावनाओं को लेकर आना और एक्चुअल आउटकम को देखना। ठीक है सब इमेजिनरी है और आप लोग इसको करना, मैं बस आपको गाइड करूँगा। ठीक है एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लूँगा। मान लीजिए एक बच्चे को एग्जाम में अच्छे रिजल्ट नहीं आए, ठीक है ताकि आप लोग उसको रिलेट कर सकें। हम सब ने स्कूल गए हैं, हमने पढ़ाई किया है और कभी कभी हमारा रिजल्ट जैसे हम चाहते हैं वो नहीं आया है, उसको हम रिविजिट करते हैं। करेक्ट चलिए सीधे बैठना है आपको, और एक छोटा सा निवेदन है, शरीर को हिलाना नहीं, स्थिर रखना, ठीक है? आपका ध्यान शरीर पर नहीं जाना चाहिए, पूरी फोकस जो गिरीश भाई कह रहा है उसको सुनिए, सब एंगेज करिए, उस घटना पे चले जाइए और वहाँ पे अपने इमोशंस को, उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह देखिए, अपने घर को देखिए, माता पिता को देखिए, वो सेटिंग को देखिए, क्लासरूम में आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं क्या, वो सब मैं जो जो बताऊँगा ना सब आप देखना, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन के साथ हियर वी स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। अपने बचपन के दिनों को देखिए, आपका एग्ज़ाम का दिन है और आप सुबह सुबह उठे, उठते साथ आप क्या महसूस कर रहे थे? थोड़ा सा स्ट्रेस था, थोड़ी सी चिंता थी, क्या होगा, एग्ज़ाम अच्छा होगा कि नहीं होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो रहा था। और जब मैं अपना डेली रूटीन, स्नान वगैरह मैंने किया, अपने चेहरे को मैंने आईने में देखा, थोड़ा सा उसमें तनाव, चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ, हम स्कूल का कॉलेज का यूनिफॉर्म हमने पहना, माता पिता ने कहा टेंशन नहीं लो, आशीर्वाद दिया, दोस्तों माता पिता को देखिए, वो घर के वातावरण को देखिए, घर के दीवारों को, उसके कलर को, उसके इंटीरियर्स को देखिए, बहुत स्पष्ट देखिए, घर का मोमेंट माहौल थोड़ा हेवी था और मैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, पापा ने मुझे बाइक में बिठाया, कार में बिठाया, मैं बस ऑटो जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल था उसको देखी अच्छी तरह। और जब मैं स्कूल या कॉलेज तक जा रहा था उस समय मेरी संवेदनाएं क्या थी, क्या मैं फील कर रहा था, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, अगर इस ये प्रश्न आया तो क्या होगा, मैंने ये चैप्टर ही छोड़ दिया है, हे भगवान इसमें से नहीं आना चाहिए कोई भी प्रश्न, ऐसी ऐसे मन के संकल्प। हम एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचे, मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैग किताब सब रख दिया, स्टेशनरी के आइटम लेकर मैं क्लासरूम के अंदर, घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्या होगा, सब अलग अलग डेस्क्स में बैठे हैं, मैं अपना रोल नंबर के आधार से प्लीज़ जाकर बैठिए, आंसर शीट में मैंने अपना रोल नंबर और बाकी डिटेल्स लिखे, मैं क्या क्या देख रहा था आजू बाजू, वहाँ का वातावरण कैसे था, वहाँ की सुगंध क्या थी, वहाँ का माहौल क्या था, टीचर बड़े स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड तरीके से बात कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, शायद मुझे घबराहट बढ़ रही थी, पसीना आ रहा था, मैंने एग्ज़ाम लिखा और एग्ज़ाम के बाद मैं क्लासरूम से बाहर आया, वापस ट्रांसपोर्ट से मैं घर आया, माता पिता ने पूछा कैसा था एग्ज़ाम, मैंने कहा ठीक था पापा, अच्छा किया मैंने, स्टॉप, बाहर आ जाइए, आंखें खोलिए अगर आपने आंख बंद किया। दोस्तों यही है मेंटल इमेजरी। अब हम एक और मेंटल इमेजरी करेंगे, हाउ टू डू इट रिवाइजिंग अ पास्ट इवेंट, वही घटना को देखेंगे और उसको एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक है? चलिए, 1 सीधे बैठिए, आंखें बंद करिए, वापस वही सुबह का टाइम, आज मेरी परीक्षा है, मैं सुबह उठा, मैं खुश हूँ, जितना हो सकता था मैंने पढ़ाई की टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, मैंने स्नान वगैरह करके स्कूल का ड्रेस पहना, अपने आप को मैं मिरर में देख रहा हूँ और महसूस हो रहा है कि ओ वाओ आई लुक सो स्मार्ट टुडे, आई हैव अ डैशिंग पर्सनैलिटी, मम्मी पापा ने मेरा चेहरे को देखा, माई फेस इज शाइनिंग ब्राइट विद अ ट्विंज ऑफ स्माइल, आंखों में चमक है, चेहरे में मुस्कुराहट है, कॉन्फिडेंट हूं। मैंने माता पिता के चरण छुए और कहा, पापा मम्मी आपका आशीर्वाद चाहिए। आई एम गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। मैं बहुत रिलैक्स्ड हूं। पापा ने पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बच्चे, तुम मेरे लायक बच्चे हो, तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। इसलिए नहीं कि रिजल्ट क्या होगा, इसलिए कि तुम्हारी वृत्ति कैसी है, योर एटीट्यूड, योर पर्सनैलिटी, योर थॉट प्रोसेस, योर बिहेवियर, तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज गो। और मुझे पता है तुम घबराओगे नहीं, रिलैक्स होकर एग्जाम लो। यस डैड, आप देखिए आप ट्रांसपोर्ट से स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। यू आर एबल टू एंजॉय द नेचर, कोई घबराहट नहीं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपने मन ही मन सोचा, अच्छा ये एक बार ये फॉर्मूला को रिवाइज कर लेता हूँ। आपने वो पेज टर्न किया, वो फॉर्मूला को देखा, क्योंकि आपका मन रिलैक्स्ड है, वो आपके मेमोरी में बहुत अच्छी तरह और स्पष्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उसको आपने एक और बार देखा। आप लोगों को देख रहे हैं, वो बस में भीड़, और आप स्कूल पहुँचे, बाकी आपके मित्र थोड़ा स्ट्रेस में हैं, वो पूछ रहे हैं ये पढ़ा क्या, ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, और आप बहुत रिलैक्स्ड हैं। आप अपने मित्रों को कह रहे हैं, टेंशन नहीं लो, जितना टेंशन लेंगे उतना भूलेंगे, परफॉर्मेंस खराब होगा, रिलैक्स। आप क्लासरूम में गए अपना बैग रख करके, अपना स्टेशनरी ले करके, क्लास का माहौल बहुत साइलेंस, वाह इस साइलेंस में तो मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मुझे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है बाहर, रोड से जाने वाले मोटर व्हीकल के हॉर्न सुनाई दे रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। टीचर ने कड़े शब्दों में इंस्ट्रक्शंस दिया, लेकिन मुझे वो कड़े नहीं लग रहे हैं, बिकॉज मुझे घबराहट ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर आंसर शीट मिला, मैंने बहुत प्यार से रिलैक्स्ड तरीके से पूरे उत्तर लिखे। एग्ज़ाम के बाद मैं वापस घर आया, घर आकर माता पिता के सामने वैसा ही चेहरा। माता पिता ने पूछा, कैसा था एग्ज़ाम? डैडी एग्ज़ाम तो जैसा था वैसा था, लेकिन मैं बहुत अच्छा था, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मेरी मन की स्थिति बहुत अच्छी थी, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी, मुझे वो सब याद आ गया जो उत्तर में लिखना था। डैड थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। धीरे से आंखें खोलिए, स्टॉप। दोस्तों यही है मेंटल इमेजरी, जितना, ये तो मैंने आपको पास्ट इवेंट के बारे में बताया, यही चीज़ आप फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। फ्यूचर के इवेंट के लिए हम करते हैं, चलिए करें एक फ्यूचर इवेंट के लिए दो मिनट मेडिटेशन, जस्ट वन मिनट सिस्टर, ठीक है। यू हैव टू विजिट द फ्यूचर, अराइवल, वार्म अप, एग्जीक्यूशन, फिनिश, डिजायर्ड आउटकम को यहाँ बैठ के देखिए, जैसे माइकल फिलिप्स ने किया, जैसे लैनी बैशम ने किया, बस इतना ही करना है। करें मेडिटेशन, सीधे बैठिए। आज आपका मैच है, आप घर से निकले, घर का माहौल कैसा है, माता पिता, बाकी आपके घर के संबंधी, वो आपको गुड लक विश कर रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप रिलैक्स्ड हैं, इजी हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, चेहरे पर वो दिख रहा है। आप ट्रैवल करके आपके स्टेडियम में पहुँचे, आपके साथियों को देखिए, आपने अपना ड्रेस चेंज किया, वो कंपटीशन के ड्रेस में आए, आपने वो खेल के टूल्स को पकड़ा, फील करिए वो सेंसरी सेंसेशन को महसूस करिए। अगर आपने बैट पकड़ा है, बॉल पकड़ा है, आप पैड पहन रहे हैं, बैडमिंटन का रैकेट आपके हाथ में, उस सबको फील करिए, क्या मन के इमोशंस हैं उसको महसूस करिए। वाह, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, आज के मैच को मैं इन्जॉय करने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी फन, इट्स गोइंग टू बी एक एब्सोल्युटली वंडरफुल, पूरे लोग आपको देख रहे हैं, आप अपने ब्रेथ को फील कर सकते हैं, पूरे स्टेडियम के उस माहौल को अनुभव कर सकते हैं। और वो मैच शुरू हुआ, बहुत टफ मैच था, लेकिन आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आपने मेंटल रिहर्सल बहुत किया है, एंड द आउटकम इज आई वन दैट पर्टिकुलर मैच, या मैं ये मैच जीत चुका हूँ। भविष्य के उस होने वाले इवेंट को मन में ऑलरेडी जीत लिया हूँ, और सिर्फ जीत लिया हूँ ही नहीं, पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे सम्मानित किया जा रहा है, मुझे गर्व है स्वयं पर, गर्व है अपने मेंटल इमेजरी, फिजिकल एक्सरसाइजेस, डाइट, हार्ड वर्क, माता पिता की ब्लेसिंग्स, अपने गुरुओं की ब्लेसिंग्स के कारण ये मैच जीता। धीरे से आंखें खोलिए दोस्तों, मुस्कुराइए, अगर यहाँ जीत सकते हैं तो रियल लाइफ में भी जीतना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू, ओम शांति। वैसे मैं आपको एक 3 मिनट का मेडिटेशन करें दीदी, 3 मिनट का करें, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपको बस वीडियो के द्वारा ये दिखाऊंगा। भाई साहब इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ये रियो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स का थीम सॉन्ग है, उसका वर्ड्स है यस आई कैन, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल ये वीडियो है, आप इसको देखिए और मेडिटेशन करिए, वो खिलाड़ियों में अपने आप को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये लाइट्स ऑफ कर दीजिए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं।
Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on as turned into. Yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence.
133 pounds of confidence. I can do anything.
Something that sings in my blood is telling me. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can.
उसके हाथ नहीं है, पियानो बजा रहा है।
Yes, I can. 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 Yes, I can.
दोस्तों इतना आसान नहीं है, बहुत सारे लोग आपको कुछ उल्टा भी बता, एक मिनट,
नो यू कांट,
घंटी बजनी चाहिए, yes, उसने कहा है, लेकिन मेरा मन कहता है यस आई कैन,
यस आई कैन, आई कैन फाइट योर ओन माइट एंड नेवर रेस्ट, यस आई
पता है ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप नॉर्मल नहीं हो। परमात्मा कहता है वी आर सुपर ह्यूमंस। आत्मा की शक्ति को हम यूज़ करके जो कुछ पाना चाहते हैं दोस्तों, वो सब प्राप्त कर सकते हैं। आई वॉज बॉर्न टूडे, ये आपका यहाँ से एक नया जन्म होना चाहिए। आत्मा मन की शक्तियों को अपने जीवन में यूज़ करें। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सफल होंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू सो मच प्रोफेसर एवियस गरीस भाई जी का। हम फिर से जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत करेंगे, थैंक यू करेंगे। आपने कितने सुंदर शब्दों में, कितने रमणीक शब्दों में, और ऐसा लगता है कि खेल खेल में आप सबके चेहरे बहुत चमक रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। कि सबको सेशन अच्छा लगा, तो फिर एक बार फिर से तालियां बजाएंगे। और सेशन में जो टॉपिक्स हमारा रहा कि कैसे जो है हम फाइव सेंसेस से मेडिटेशन में हम विजुअलाइजेशन करें, कैसे हम अपने मन से प्यार करें और उस सुप्रीम पावर से, उस परमात्मा से एनर्जी लें और अपने एम तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।